मैं सर्वप्रथम बिलावल उपस्थित करने जा रहा हूं। बिलावल इसलिए कि यह सभी स्केलों का, सभी संगीत के स्वरों का आदि स्वरूप है। बिलावल या प्राकृत गान दोनों एक ही हैं, और प्रकृति जब से उत्पन्न हुई तब से बिलावल की यह स्वरावली प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुई हुई है। वह कैसे, जरा सा उसका विवरण आपको समझा। प्राकृत ग्राम, जिसे हम लोग आज की भाषा में नेचुरल स्केल कहती हैं, जब से प्रकृति का जन्म हुआ तभी से उसका अस्तित्व माना जाना चाहिए। प्रकृति के गंधर्वों अथवा यानी पक्षी इत्यादि के द्वारा उसकी अनुभूति आज भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। प्राचीन महर्षियों के काल में भी निश्चय ही प्राकृत गान का अस्तित्व होगा ही। मैं फिर कभी इस बात को समझाऊंगा कि इसी प्राकृत गान के आधार पर भरत, कोहल, दत्तिलादि महर्षियों ने, मतंगादि मुनियों ने षड्ग्राम और मध्यमग्राम की स्वरसृष्टि उद्भूत की है। साथ ही उन महर्षियों की पैनी बुद्धि ने षड्ग्राम और मध्यमग्राम की जटा में प्राकृत ग्राम ओझल कहीं न हो जाए इसलिए, और उन ग्रामों के अंतर्गत प्राकृत ग्रामों का दर्शन होता ही रहे, तन्निमित्त समुचित व्यवस्था रखी है। तदनुसार षड्ग्राम के नैषादि मूर्छना में चतुश्रुति युक्त धैवत प्राकृत ग्राम एवं मध्यम ग्राम की नैषादि मूर्छना में विशुद्ध प्राकृत ग्राम का पुनर्दर्शन कराया गया है। षड्ग्राम और मध्यम ग्राम दोनों में अंतर गांधार और काकली निषाद विशेष रूप से प्रयुक्त करने का शास्त्रकारों ने जो आदेश दिया है उसके पीछे यही हेतु है। तदनुसार षड्ग्राम के मध्यम की मूर्छना में काकली प्रयुक्त करने से भी आधुनिक बिलावल का या आज के या पुराने काल का प्राकृत गान का समुख्य दर्शन होता है। यही प्राकृत गान परंपरा से अविकल रूप से हमारे संगीत में प्रयुक्त होता आया है। वह किसी विदेशी संगीत पद्धति का प्रभाव नहीं ही है। कुछ लोग भ्रांतिवश, भ्रमणावश अथवा अनजानपन में इसे यूनान, अरब या फारस के प्रभाव का परिणाम समझते हैं, किंतु भारत के महर्षि सदैव ही प्रकृति में ही पलते रहे हैं, और इस प्रकार यह प्राकृत गान उनमें सहज ही घुला हुआ रहा होगा। यह निर्वाण सत्य है, निर्धांत सत्य है। हम यह भी देखते हैं कि कर्नाटकीय संगीत में शंकराभरण नामक जो मेल और राग प्रचलित है वह और कुछ नहीं अभी तो प्राकृत गान की ही सुरावली है। यह निस्संदेह सत्य है। बिलावल और प्राकृत गान के स्वरों के गुणोत्तर प्रमाण तथा तदनुसार उनकी आंदोलन संख्या अभिन्न है, यह भी आपको विदित हो। यदि षड्ज को हम एक मान लें तो उसकी आंदोलन संख्या ग्रहीर संख्या आंदोलन की 240 मानी जाएगी। री सा से लेकर नौ अष्टमांश यानी 270, ग पांच चतुर्थांश यानी 300, मध्यम चार तृतीयांश यानी 320, प तीन द्वितीयांश यानी 360, ध पांच तृतीयांश यानी 400 और नी 15 अष्टमांश यानी 450। इस प्रकार प्राकृत ग्राम के और बिलावल के जो आंदोलन संख्या है उनके गुणोत्तर प्रमाण है वह भी एक रूप है। इसलिए बिलावल और प्राकृत ग्राम एक ही के भिन्न भिन्न नाम है और कुछ नहीं, यह विदित होगा। यहाँ एक विशेष बात धैवत के बारे में कहना चाहता हूँ, उचित भी है, और वह यह कि कुछ लोग बिलावल की स्वरावली में चतुश्रुति धैवत की सत्ता स्वीकार करते हैं, जिसका गुणोत्तर प्रमाण 87-16 एवं आंदोलन संख्या 405 है। इसी धैवत के आधार पर वे लोग बिलावल को प्राकृत गान से भिन्न मानते हैं, किंतु वस्तुस्थिति यह है कि बिलावल में त्रिश्रुति धैवत का ही प्रयोग होता है। तानपुरे के साथ गाते हुए संवाद सिद्धांत के अकाट्य नियम के अनुसार सहज ही त्रिश्रुति धैवत का ही प्रयोग होता है, जिसका गौतम प्रमाण 5/3 और तदनुसार आंदोलन संख्या 400 की है। वीणा पर बाज के तार को मध्यम मानकर वादन करने से भी देवत त्रिश्रुति ही प्रयुक्त होता है और इस प्रकार बिलावल तथा प्राकृत गाम की एक रूपता अखंड रूप से चली आई है। एक बात यह भी समझा दूं कि जब तानपुरे पर हम लोग गाते हैं तब तानपुरे के खरस से गांधार स्वयंभू गांधार उद्भूत होता है और वह स्वयंभू गांधार के साथ में षड् मध्यम भाव से उस दैवत का पूर्ण सामंजस्य और संवादात्मक संबंध स्थापित होता है। गांधार की आंदोलन संख्या 300 है और तदनुसार उसकी 400 ही होगी दैवत की, ये निस्संदेह सत्य है। तदुपरांत एक बात विचारणीय और भी है, तानपुरे में तो षड्ज बसता ही रहता है मतवातर सतत रूप से वह गुंजित होता रहता है, उस षड्ज से उस दैवत का संबंध वेशश्रुति के संवाद से यानी 6/5 के हिसाब से उसका सतत आंदोलन मिलता रहता है। इससे भी गाने वाले बजाने वाले चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो कोई भी क्यों न हो, जो प्राकृत गाम को या बिलावल को बजाएगा गाएगा उस समय त्रिश्रुति धैवत ही यानी 400 का धैवत ही प्रयुक्त होगा और कोई ना होगा। वीणा पर बाज के तार को मध्यम मानकर वादन करने से भी दैवत त्रिश्रुति ही प्रयुक्त होता है और इस प्रकार बिलावल तथा प्राकृत गाम की एक रूपता अखंड रूप से चली आई है। केवल एक ही स्थिति में चतुश्री धैवत प्रयुक्त होता है और वह है वीणा के बाज के तार को षड्ज मानकर वादन करने की क्रिया, उस अवस्था में दैवत का पर्दा त्रिश्रुति अंतराल युक्त होता है किंतु उसके आधार पर बिलावल को प्राकृत गाम से भिन्न सिद्ध करने का यत्न केवल कुतर्क मात्र है, इसका ध्यान रखा जाए। इस बिलावल के स्वर आपके सामने मैं पहले थोड़े से गा सुनाता हूं। प्राकृत गाम है, पाइथागोरस के काल से भी इसी को प्राकृत गाम मानते आए हैं, हेल्महोल्ट्ज़ ने भी इसी को प्राकृत गाम माना है और यही हमारा आज का बिलावल है और परंपरा से इसी को हम बिलावल बिलावली शंकराभरण कहते आए हैं। अब निस्संदेह सत्य सिद्ध होगा कि हमारे प्राकृत गाम से बिलावल का सामंजस्य पूर्णतया संबद्ध है। इस प्रकार के प्राकृत गाम के रहते हुए हम देखते हैं कि उसमें एक नियम का आधार बनाकर उस राग में उसको राग रूप दिया जाता है। राग रूप देने के लिए शास्त्र की आज्ञा है कि जब तक उसको राग रूप देना हो तो जब तक उसे 10 नियम न बांधे जाएं तब तक वह राग राग का रूप धारण नहीं करता है। और इसलिए जब इस बिलावल की या प्राकृत गाम की स्वरावली में उसको राग रूप देते हैं तब इसमें आरोह में मध्यम का परित्याग करते हैं। उस वस्तु को जरा मैं अधिक रूप से आपको समझाऊं के इसमें आरोह करते समय मध्यम का परित्याग किया, सारे गप गए और हर एक स्वर को आंदोलन देते हुए गए, सारे सीधा रे सारे जो होगा सारे, यह स्पर्श स्वर यह कर्ण अत्यंत आवश्यक है, सारे गा अवरोह करते समय निषाद का परित्याग, तभी एक राग मुकम्मल होता है अन्यथा नहीं। किंतु मैं चाहता था कि इसकी भी इसका कोई ख्याल या द्रुपद आपको सुना था, किंतु हम देखते हैं ये परंपरा से इसको इसी प्रकार रखा गया है, उसमें बंदिशी चीजें किसी ने नहीं बांधी हैं। विद्यार्थी को सिखाते समय सर्वप्रथम इसी का प्रयोग होता है, इसमें बिल्कुल मामूली रूप से कुछ चीजें बनी हुई हैं, उसको गा के सुनाना मैं समुचित नहीं समझता हूँ। इसलिए मैं अब उसके आगे इसी बिलावल में एक कोमल विषाद का उपयोग करके प्राकृत गाम से एक दूसरा ही, जिसको अलहिया बिलावल हम लोग कहते आए हैं, अलहिया बिलावल की सृष्टि का सृजन दिखाता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी भी स्वरावली को जब राग रूप दिया जाता है तब सदा ही उसे 10 लक्षणों से युक्त बनाया जाता है, बनाना पड़ता है। वे 10 लक्षण भरत के कथनानुसार ये हैं, ग्रहांशौ तारमंद्रौ च, ग्रह अंश तारमंद्र, न्यासौ न्यासौ अपन्यास एव च, न्यासोपन्यास एव च, अल्पत्वञ्च बहुत्वञ्च शार्वौरविते तथा, यानी ग्रह अंश तारण मंद्र न्यास अपन्यास अल्पत्व बहुत्व शारव और ओरव, ये 10 लक्षण जब तक नहीं रखते हैं तब तक एक राग मुकम्मल राग नहीं होता। यह नाथ शास्त्र के 28 अध्याय में लिखा हुआ है, जो देखने वाले हों, देखने की इच्छा रखने वाले हों, वे वहां देख सकते हैं। राग लक्षण की दृष्टि से इस प्राकृत गाम की स्वरावली का विवरण मैंने आपको कहा, साथ ही इसके आरोह में मध्यम वर्ज किया जाए, धैमत को आंदोलित बनाकर और अवरोह में निषाद अति अल्प मात्रा में छूकर गांधार का वक्र प्रयोग और शब्द पर न्यास करते हुए अंतिम ग को छूकर नी सा नी सा, यूं करने से बिलावल का एक शुद्ध रूप खड़ा होगा। किंतु प्रचार में इस राग के ध्रुपद ख्याल आदि चीजें संप्राप्त नहीं होती, नहीं ही है। इसका विपुल प्रचार है वह तो है अलहिया बिलावल। इस नाम से जो परिचित हैं वे सभी जानते हैं अलहिया की स्वरावली यूं है, सा रे ग प ध नी सा ध नी ब ध ग मरे गणेशा। यह आरोह अवरोह स्वयं कह देता है कि इस राग में शुद्ध बिलावल की अपेक्षा अवरोह में केवल कोमल निषाद ही विशेष रूप से प्रयुक्त होता है और धग तथा मरे इन स्वरों की संगति रहती है। सामान्यतः प्राकृत गाम के स्वरों की अन्य स्वरों के स्पर्श नहीं किए जाते, किंतु बिलावल अथवा अलहिया बिलावल में प्रायः सभी स्वरों को अन्य स्वरों के कण लगाना अनिवार्य माना गया है। सारे ग प ध सारे ग प ध, इस क्रिया में पहले धैमत को तीव्र निषाद का स्पर्श होता है। धा और बाद में कोमल निषाद के स्पर्श से इसे अंदरित किया जाता है। पूर्वांग में भी स्वरों को एक विशेष ढंग से छुआ जाता है, यथा मग मरे मग मग, यानी म म मुस्कान को छुए, मग ग को मग्न को छुआ, मग मरे मरे मग मरे, यो नहीं मग मरे गने निषाद लिया जाता है। जरूर है कि ग को जो उसका समाई स्वर है नी गने नी साधने सा, इस क्रिया में पहले धैमत को तीव्र निषाद का स्पर्श होता है और बाद में कोमल निषाद के स्पर्श से इसे आंदोलित किया जाता है। पूर्वांग में भी स्वरों को एक विशेष ढंग से छुआ जाता है, यथा मग मरे गणेशा गणेशा। पूर्वांग में यह क्रिया और उत्तरांग में धैमत का विशेष उच्चार इस राग का अपना वैशिष्ट स्थापित करते हैं। इस राग की प्रवृत्ति सहसा ताल सप्तक की ओर जाने की रहती है। इसकी जाति षाढ़ो वक्र संपूर्ण, ग्रह मध्यम, मध्यम षड्ज, मध्य षड्ज, अंश पूर्वांग में ऋषभ और उत्तरांग में धैवत, न्यास पंचम, विन्यास मध्य षड्ज, मुख्य अंग मग मरे गणेश, समय प्रातः काल प्रथम प्रहर। बहुत गांधार का बहुत्व है, ऋषभ का ही बहुत्व है, मध्यम अल्पत्व है और आरोह में उसको सदा ही वर्ज करना है। अब मैं अलिया बिलावल की चीज सुनाता हूं।